अभी तक आप लोगों ने साइको निरोबिक यानी कि साइंस ऑफ चक्र विज्ञान, उसको आपने उसका इंट्रोडक्शन समझा, उसके बेसिक समझा, यह समझा कि साइको निरोबिक या चक्र विज्ञान है क्या और डिजीज का रूट कॉज क्या है, बीमारियों का मुख्य कारण क्या है, और ये लाइफ फोर्स एनर्जी, बायो इलेक्ट्रिकल करंट, स्पिरिचुअल एनर्जी, उसको समझा। फिर हमने जाना कि गोल्डन एज में रास, रंग और नाद, इन तीनों के द्वारा वैदिक समय के लोग लाइफ फोर्स एनर्जी को सेलुलर लेवल पर लेकर जाते थे, जिसकी वजह से उनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता था और वो अपने आप को एक वेलनेस की मोड में हमेशा रखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय चेंज होते गया, गोल्डन एज से कॉपर एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज यानी कलयुग, जिस समय में अभी हम जी रहे हैं 21st सेंचुरी, वहां पर सारी चीजें बदलती गई, चाहे वो लाइफ स्टाइल की बात हो, चाहे वो थॉट्स की बात हो, और चाहे एनर्जी टैपिंग की बात हो, चाहे गॉड के साथ कनेक्शन की बात हो। भूलते गए हम उस गॉड के साथ कनेक्शन, हमारा कम होते गया। वैदिक समय में, गोल्डन एज में, लोग मेडिटेट करते थे और रास, रंग और नाद के द्वारा स्पिरिचुअल एनर्जी को टैप करते थे। उनका नींद भी बहुत अच्छा होता था, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो बॉडी के लेवल पर बहुत अच्छा था। लेकिन 21st सेंचुरी में हरी भरी और करी, भागदौड़ भरी जिंदगी, केमिकल रेडिएशन, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन, साथ में माइंड के अंदर टेंशंस, और उसके साथ विजिबल इनपुट और इनविजिबल इनपुट। विजिबल इनपुट मींस फूड, एयर, वाटर, और इनविजिबल इनपुट मींस इंफॉर्मेशन एंड थॉट्स, ये सारे डिस्टर्ब हो गए। इस वजह से नींद भी डिस्टर्ब हुआ। तो बैटरी चार्जिंग का या स्पिरिचुअल एनर्जी को टैप करने का जो एक मेन साधन था, जिसे हमने कहा, वो भी स्लीप, वो भी डिस्टर्ब हो गया। तो मॉडर्न वे में आज हर कोई सेलुलर लेवल पर एनर्जी डिस्टर्बेंस फेस कर रहा है। इसी वजह से डिजीज इतनी बढ़ गई है, इंसिडेंस प्रेवलेंस बढ़ गया है। ये लाइफ फोर्स एनर्जी का मेजरमेंट कुछ डिवाइसेस के मदद से आप करके देख सकते हैं। जैसे एक डिवाइस जो हमने बताया, जीडीबी बायोबेल, जिसके अंदर 40 to 70 जूल्स एनर्जी होना चाहिए ओवरऑल, और हर पॉइंट पर 4 to 6 जूल एनर्जी होना चाहिए, लेस देन 4, मोर देन 6, ये इंबैलेंस है, हाइपर या हाइपो। ये एनर्जी सिस्टम यानी कि एनर्जी बॉडी, जैसे फिजिकल बॉडी है, उसके बियॉन्ड एनर्जी बॉडी है, जिसके अंदर 72,000 नाड़ियां हैं और 114 चक्र हैं, और उन 114 चक्रास में से 7 मेजर चक्र हैं। 7 मेजर चक्र जो हैं, ये कंट्रोल करते हैं इस लाइफ फोर्स एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, बायो इलेक्ट्रिकल करेंट को पूरे शरीर के अंदर। ये कंट्रोलिंग प्वाइंट है, जो चक्र हैं वो लाइफ फोर्स एनर्जी को टैप भी करते हैं, रिसीविंग प्वाइंट भी हैं, रिसीवर भी हैं, फिर उसे ट्रांसमिट भी करते हैं नाड़ियों के अंदर, इसीलिए वो ट्रांसमीटर भी हैं, स्टेबलाइज भी करते हैं, यानी रिसीव करने के बाद अगर ज्यादा वोल्टेज आ गई उसे कम करना, कम वोल्टेज आ गई उसे ज्यादा करना, स्टेबलाइज भी करते हैं, असिमिलेशन, असिमिलेट भी करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर उसे पहुंचाने का काम भी करते हैं। यानी ये जो चक्र हैं, ये मल्टीपल काम करते हैं एनर्जी के लिए, यू कहें ये पूरे एनर्जी बॉडी सिस्टम के कंट्रोलर हैं। मेजर 7 कंट्रोलिंग पॉइंट्स हैं हमारे इस एनर्जी सिस्टम के। मैं ऐसा कई बार इमेजिनेशन में सोचता हूं या इमेजिन करता हूं कि आने वाले समय में कुछ ऐसी डिवाइसेस आ जाएंगी जिसके द्वारा हम अपनी एनर्जी बॉडी को हर समय देख पाएंगे, जैसे हम अपनी फिजिकल बॉडी को देख पा रहे हैं, हर समय एक एनर्जी बॉडी भी हमारे चारों तरफ विजिबल रहेगी हमें डिवाइस की मदद से। और कितना अच्छा होगा, जैसे हमारे फिजिकल बॉडी में कोई अगर ट्यूमर निकल आता है, कहीं पे कोई दाग धब्बा आ जाता है, कोई कट आ जाता है, उसे हमें दिखाई दे जाता है और हम उसकी रिपेयर कर लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे कट गया तो डिटॉल लगा लेते हैं, बैंडेज लगा लेते हैं। कितना अच्छा हो कि हम अपनी एनर्जी बॉडी को भी देख पाए और वहां पर भी दिखे कि यहां पे धब्बा पड़ गया है, यहां पे कट लग गया है, यहां पे डैमेज हो गया है, और उसे वहीं के वहीं रिपेयर कर दें। आने वाले दिनों में मेरा ऐसा इमेजिनेशन है कि साइंस और टेक्नोलॉजी जितना एडवांस होते जा रहा है तो इस डायमेंशन को भी साइंस और टेक्नोलॉजी कवर कर लेगा और हम एक दूसरे की एनर्जी बॉडी को भी देख पाएंगे और अपनी एनर्जी बॉडी को भी। हो सकता है कोई ऐसे गॉगल्स आ जाएं कि आप ये गॉगल लगाएं और आपको सामने वाले की एनर्जी बॉडी भी दिखाई देना शुरू हो जाए, कितना अच्छा होगा। तो फिर कितना अच्छा होगा कि माधुरी जी जो है ऐसे गॉगल लगाएंगी और गॉगल के अंदर बटन को ऑन करेंगी और उन्हें पता चल जाएगा सामने वाले का ऑरा कैसा है, इससे मिलना है या नहीं मिलना है, कितना देर इसके ऑरा में रहना है, और साथ ही साथ उन्हें अपनी एनर्जी बॉडी भी दिखाई देगी। और जब सामने कोई बैठा हुआ है और इन्हें दिखाई दे रहा है कि एनर्जी का ट्रांसमिशन इनके बॉडी से उनकी बॉडी में जा रहा है, यानी यह व्यक्ति इनसे एनर्जी लेते जा रहा है और इनके सामने एक मीटर रहेगा और उस मीटर में इनकी एनर्जी किट 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 डाउन होती शुरू हो जाएगी, दिखना शुरू हो जाएगा, और ये कंट्रोल कर पाएंगे कि बटन दबा के नहीं, अब कनेक्शन कट कर दिया जाए। ये साइंस फिक्शन मूवी वेस्टर्न वर्ल्ड की बहुत सारी इस कॉन्सेप्ट पर बनी है, लेकिन ये सारी चीजें रियलिटी में आने वाली हैं आने वाले समय में। जैसे अगर हमारे दादा परदादा की बात करें, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जूम मीटिंग होगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हम ऐसे लॉकडाउन में ऐसे बैठकर एक दूसरे के सामने बात कर पाएंगे, एक दूसरे को देख पाएंगे और इंफॉर्मेशन और एनर्जी का ट्रांसफर कर पाएंगे। उन्होंने तो मोबाइल फोन के बारे में भी नहीं सोचा था, और मोबाइल फोन तो आज एक पूरी दुनिया बन गया है, स्मार्टफोन बन गया है। तो सेम टू सेम आज हम ये परिकल्पना कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सारी चीजें साइंस के द्वारा रियलिटी बन जाएंगी, और शायद तभी लोगों को समझ में आएगा कि फिजिकल साइंस के बियॉन्ड मेटाफिजिकल साइंसेज हैं, फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड मेटाफिजिकल बॉडीज हैं जिन पे काम करना जरूरी है। तो ये जो सेकंड लेयर है, सेकंड मेटाफिजिकल बॉडी जिसे हम कहते हैं एनर्जी बॉडी, इसमें 72,000 नाड़ियां और 7 चक्र हैं, उसमें से आज हम पहला चक्र जिसका नाम है रूट चक्र, मूलाधार, मूल आधार, ये हमारा बेसिक नींव है, बिल्डिंग ब्लॉक है, ये ग्राउंडिंग है, मतलब ये हमें जमीन के साथ जोड़ के रखता है, इसीलिए इसका जो लोकेशन है वो सबसे नीचे है। कहां पर? स्पाइन, जहां पर फिनिश होता है, लास्ट पॉइंट, टेल बोन का टिप, या यू कहें एनस और जेनिटेलिया, उन दोनों के बीच का पार्ट है। सबसे जब हम जमीन पर बैठते हैं तो हमारा रूट चक्र जमीन के साथ अटैच होता है, इनफैक्ट रूट चक्र दोनों लेग्स के साथ, लोअर लिम के साथ जुड़ा हुआ है और जमीन से हमें जोड़ के रखता है। इनफैक्ट अर्थ की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, PEMF, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, वहां से एब्जॉर्प्शन का काम रूट चक्र का ही है। इसीलिए कहते हैं कि जो आदमी स्ट्रांग होता है, ताकतवर होता है, वो जमीन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे पेड़ जिसकी जड़ें बहुत अच्छी होती हैं, उसे गिराना बहुत मुश्किल होता है, इसी प्रकार से व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा रहेगा, ग्राउंडेड रहेगा, वो बहुत स्ट्रांग आदमी होगा। कुछ होते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे होंगे लेकिन ग्राउंडेड नहीं होंगे, हवा की बातें करेंगे, हवा हवाई बातें, लेकिन वो ग्राउंडेड नहीं होंगे तो वो बहुत जल्दी थोड़ी सी आंधी में उड़ जाएंगे। कहीं पौधे दिखने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन आंधियां झेल नहीं पाते, और कहीं दरकत, बड़े बड़े पेड़ वृक्ष बहुत स्ट्रांग होते हैं, दिखने में अच्छे नहीं होते और आंधियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो अपनी रूट, रूट चक्र को स्ट्रांग करें और अपनी रूट को पृथ्वी के साथ, जमीन के साथ जोड़े रहें। पैर हमेशा जमीन पर रहने चाहिए और निगाहें आसमान की तरफ। रियल सक्सेस, रियल तरक्की, प्रोग्रेस इसी को बोलते हैं। अगर सक्सेस की वजह से आपकी पैर जमीन से उड़ गए, उठ गए, तब आपको गिरने में देर नहीं लगेगी। जैसे फेलियर हैंडल करना आते आना चाहिए, उसी प्रकार से सक्सेस को हैंडल करना सीखना पड़ता है। फेलियर तो बहुत सारे लोग हैंडल कर लेते हैं, लेकिन सक्सेस हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सक्सेस जब आता है पावर आता है, और पावर जब ओवर कॉन्फिडेंस ले आता है, रूट चक्र का डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो फिर वो आदमी बहुत जल्दी वापस जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसने अपने पैर जमीन से ऊपर कर लिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ आपने देखा, कपिल शर्मा को ही लीजिए, जब उसका कॉमेडी शो बहुत फेमस हो गया था, उसकी ऐसी हालत हुई कि वो जमीन से ऊपर आ गया था, हवा में उड़ने लगा था, और उसके बाद क्या हश्र हुआ हम सबको मालूम है। लेकिन उस व्यक्ति की रेजिलियंस, बाउंस बैक मुझे अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। उस व्यक्ति ने अपनी चीजों को रियलाइज किया, वापस बाउंस बैक किया, और इस बार जो उसने बाउंस बैक किया है, उसने अपने आप को जमीन से जोड़ के रखा है, अपने रूट चक्र को वहां से हिलने नहीं दे रहा है। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल जो हम सबके सामने में है, ये हमें मॉरल देता है स्टोरी का, कि रूट चक्र के साथ हमेशा जुड़े रहें। जब जब आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे, इनसिक्योर फील करेंगे, फियर महसूस करेंगे, आपका रूट चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने क्या कहा, फियर, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीजें आपके रूट चक्र को डिस्टर्ब करती हैं। ये एक साइकिल होता है, जैसे जैसे आप फियर में जाएंगे, इनसिक्योर फील करेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, रूट चक्र छोटा होते जाएगा या इंबैलेंस होते जाएगा, और एक बार रूट चक्र इंबैलेंस हुआ, फिर इमोशन और ज्यादा डिस्टर्ब होंगी, और ज्यादा फियर आएगा, और ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, और ज्यादा इनसिक्योर महसूस करेंगे, तो एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है इमोशन और एनर्जी बॉडी का। इमोशन डिस्टर्ब, एनर्जी बॉडी डिस्टर्ब, एनर्जी बॉडी डिस्टर्ब, इमोशन मोर डिस्टर्ब। कैसे रोकना होगा, दो चीजों पे, या तो इमोशन को ठीक करो या एनर्जी बॉडी को वापस प्रोग्राम करो, और दोनों ही ठीक कर लें तो और अच्छा है, यानी अपने इमोशन पे भी काम कर लें और एनर्जी बॉडी का प्रोग्रामिंग भी कर लें। स्टार्टिंग में धीरे धीरे फियर, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके रूट चक्र को स्मॉल कर देते हैं, लेस एनर्जेटिक कर देते हैं, उसका एनर्जी लेवल 4 से भी नीचे चला जाता है, हाइपोएक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, पावर के नशे में झूम रहे हैं, पावर आपके पास बहुत सारी है और आपको घमंड आ गया है, तब आपका यह रूट चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है, ज्यादा साइज का, ज्यादा एनर्जी का, इंबैलेंस, उस कंडीशन में हाइपर एक्टिव रूट चक्र, वो भी सही नहीं है। वहां पर आप लेजी हो जाएंगे, स्लगिश हो जाएंगे, प्राउड फील करेंगे, ओवर ईगो आना शुरू हो जाएगा, जमीन से ऊपर उड़ जाएंगे, लोगों को कुछ नहीं समझेंगे, यह कंडीशन भी रूट चक्र को डिस्टर्ब करती है। तो यानी कि हाइपोस्टेट और हाइपर स्टेट दोनों ही ठीक नहीं है, क्या रखना है, बैलेंस इन बिटवीन 4 to 6, एक एनर्जी बैलेंस होना चाहिए, दूसरा उसका अलाइनमेंट सेंट्रल होना चाहिए। मैंने क्या बताया, साइकोलॉजी ऑफ रूट चक्रा, अगर ये बैलेंस्ड है तो आप ग्राउंडेड फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे। अगर ये हाइपोएक्टिव है, आप फील करेंगे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी और फियर। अगर ये ओवर एक्टिव है, तब आप प्राउड, ओवर प्राउड, ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो, ये चीजें फील करेंगे। जब ये अंडर एक्टिव होता है, लेस एक्टिव होता है, तब डिजीज कौन सी आती है, पर्सन उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, पतला दुबला हो जाएगा, बोन मसल्स थिन हो जाएंगे, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मिनरल्स कम हो जाएंगे, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, मिनरल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, बोन थिनिंग हो जाएगा, मसल्स और ज्वाइंट्स, बोन मसल ज्वाइंट, ये तीनों डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे। मस्कुलर पेन शुरू हो जाएगा, बोनी पेन शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ क्योंकि ये बोन मैरो से रिलेटेड है, बोन मैरो में क्या बनती है, ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स जो है वो एनीमिया होना शुरू हो जाएगा, आरबीसीस कम हो जाएंगे, और अगर आपका रूट चक्र अंडर एक्टिव है तो आपको खून की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम पैथोलॉजी के लेवल पे बात करें तो एनीमिया, सेम टू सेम पर्सन लिंथिन होगा, मसल ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, बोन थिन हो जाएंगी अगर ये अंडर एक्टिव है। अगर ये ओवर एक्टिव है तो क्या होगा, पर्सन का वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ओवर ओबेज हो जाएगा, वो मसल मास बढ़ जाएगा, फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा, वो डल हो जाएगा, सारा दिन सोया रहेगा, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। आयुर्वेद में इसे कहते हैं इन रशिया यानी तमस, तमस गुण उसमें बढ़ जाएगा, और तमस गुण बढ़ने की वजह से वो इनएक्टिव हो जाएगा, डल हो जाएगा। साथ ही साथ हेमोग्लोबिन ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, पोलीसाइथीमिया हो सकता है। फिर उसके साथ बोन मैरो की जो सेल्स हैं वो डिस्टर्ब होंगी, तो इम्यून सिस्टम भी अफेक्ट होगा। मेजर प्रॉब्लम अगर हम मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो इसे कहा गया है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, यानी इसके पास ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है। रूमेटोलॉजिस्ट मतलब ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम, बोन मसल ज्वाइंट, ये तीन चीज इसकी वजह से अफेक्ट होती हैं। तो एक तरफ आपको अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी समझनी है और एक तरफ साइकोलॉजी समझनी है। फिर आप अपना एनालिसिस करें कि आपका रूट चक्र आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है। फीलिंग, क्या आप फियर महसूस करते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। दूसरी तरफ क्या आप प्राउड की फीलिंग करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हैं। फिजियोलॉजी, इधर लिंथिन है, पतले दुबले हैं, हेमोग्लोबिन कम है, मसल मास कम है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, हाइपो, बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, ओबेस हो गए हैं, मसल मास ज्यादा हो गया है, स्लगिश हो गए हैं, सारा दिन सोने का मन करता है, हाइपर। अगर बैलेंस्ड होगा तो क्या रहेगा, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे, किसी चीज का फियर नहीं होगा, और वास्तविकता में रहेंगे, रियलिटी में रहेंगे, ना जमीन से उड़ेंगे और ना ही डरेंगे। यानी जब आप अपने साथ जुड़े हुए होते हैं आपको किसी चीज का डर नहीं होता। कोई व्यक्ति आपके सामने ज्यादा पावर में आएगा तो आप उससे डरेंगे नहीं, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई ठीक है, पावर तुम्हारे पास है, मैं अपनी पावर में खुश हूं। और कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आएगा जो आपसे बहुत इन्फीरियर दर्जे का है, आपसे लो लेवल पर है, आप उसके ऊपर डोमिनेट नहीं करेंगे अगर आपका रूट चक्र बैलेंस्ड है। बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है, ना एक्टिव हाइपर एक्टिव और ना ही अंडर एक्टिव। तो देखिए जरा अपने अपने माइंड में झांक कर, अपनी बॉडी में झांक कर कि आपका रूट चक्र किस स्थिति में है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सेकेंड थिंग, अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से मैक्सिमम लोगों का रूट चक्र डिस्टर्ब है। कारण फियर, एक कॉन्स्टेंट फियर कि कोरोना मुझे तो नहीं हो जाएगा, सबको है, मेरे नियर डियर वंस को नहीं हो जाएगा, इस बात का फियर है। दूसरा इनसिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी सबको दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे पृथ्वी का रूट चक्र अभी हिला हुआ है, समझ रहे हैं आप। और ये मेटलिस्टिक साइंस का मतलब मेटलिस्टिक चीजें, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन रुका हुआ है, प्रोडक्शन बंद है, पूरा वर्ल्ड फियर में है, अगर हम एक पूरे जनरलाइज्ड रूट चक्र की बात करें तो ऐसे में इस क्राइसिस में आपको रूट चक्र को एक्टिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसे इमोशनली तो नहीं कर सकते, इमोशनली इसलिए नहीं हो सकता कि जब तक कोरोना की क्राइसिस जाएगी नहीं, जब तक आपका फाइनेंशियल स्टेटस वापस नॉर्मल नहीं आएगा, तब तक आप इमोशनली इस रूट चक्र को नॉर्मल लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एनर्जेटिकली, साइकोन्यूरोबिकली आप इस चक्र को प्रोग्राम करके वापस कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं, सिक्योर फील कर सकते हैं, बैलेंस्ड फील कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि इस चक्र को कैसे एक्टिव किया जाए। हम इस सेवन सेशन में इस तरीके से चलेंगे कि एक एक चक्र की पहले एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी जानेंगे, समझेंगे, फिर उसे ठीक करने का तरीका समझेंगे और अपना सेल्फ एनालिसिस करते रहेंगे कि जो मैंने समझा आज उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा चक्र किस स्थिति में है। आप अपने आप को 0 से लेकर 10 के बीच में रूट चक्र को कितना नंबर देते हैं अपने माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा लिख के चैट बॉक्स में लिखें। 0 to 10 आपको क्या लगता है कि आपका रूट चक्र कैसा है? 5 मतलब बैलेंस, 0 मतलब, 0 मतलब इनएक्टिव, 10 मतलब हाइपर एक्टिव। यानी ये बोल सकते हैं -5 0 से लेकर 10 5 दी बेस्ट है। तो आप कितना समझते हैं, 4 समझ रहे हैं या 6 समझ रहे हैं, अपना अपना लिखिए। ओके, अब हम देखेंगे रूट चक्र की प्रॉपर्टीज। इस चार्ट की मदद से मैं आपको रूट चक्र के बारे में बताना चाह रहा हूं, ये कौन सी ग्लैंड्स के साथ जुड़ा हुआ है। किडनी के ऊपर 2 बीन शेप ग्लैंड होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर एड्रिनल हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट करती हैं, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। मूलाधार चक्र, रूट चक्र एड्रिनल ग्लैंड के साथ सिचुएटेड होता है, एसोसिएटेड होता है। अगर आपका मूलाधार चक्र एक्टिव है, ओवर एक्टिव है, तो आप स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मसल और बोन ज्वाइंट्स, उससे रिलेटेड ये काम करता है। और तीसरा काम इसका इम्यून सिस्टम को लेकर भी है। इसीलिए कहा जाता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में कि जब जब आप फियर में रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाएगा। जैसे अभी कोरोना का फियर इतना बना दिया गया है, जिसकी वजह से एक तरफ हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काढ़ा पी रहे हैं, फिजिकल चीजें कर रहे हैं, दूसरी तरफ फियर हमारे रूट चक्र को डाउन करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन है। अगर हम एनर्जी साइंस की बात करें, वो भी बताता है, यहां से यह सिद्ध हुआ कि फियर रूट चक्र को कम करता है और रूट चक्र के कम होने से इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में हमने पढ़ा कि साइकी में अगर फियर है तो इम्यून सिस्टम आपका डाउन फील करेगा। अब हम बात करें प्रिंसिपल्स की। ये सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाइटलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेबिलिटी के लिए, ग्राउंडिंग के लिए, सेफ्टी के लिए। सर्वाइवल, जब जब आप सिक्योर महसूस करेंगे कि मेरा सर्वाइव करना एकदम इजी है, तब ये रूट चक्र आपका बहुत एक्टिव रहेगा। वाइटल, अगर रूट चक्र आपका एक्टिव है, नॉर्मल है, बैलेंस्ड है, तो आपके शरीर में पूरा वाइटलिटी रहेगी, स्टेमिना रहेगा। स्टेबिलिटी, स्टेबल रहेंगे आप, कितनी भी हवाएं आ जाएं आप इधर उधर नहीं जाएंगे। ग्राउंडिंग, जमीन से जुड़े हुए रहेंगे। और सेफ्टी, सेफ महसूस करेंगे। कहां पर बताया? बेस ऑफ स्पाइन पर, रेड कलर है इसका। बीज मंत्र इसका है लम लम, ये इसका साउंड है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र मतलब जब हम बीज मंत्र को उच्चारण करते हैं तो ऐसी फ्रीक्वेंसी और ऐसी वाइब्रेशन बॉडी में सीक्रेट होती है जहां पर आपका रूट चक्र है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। एक बार जरा बोल कर देखें, लम का उच्चारण करके देखें, अपने आप को म्यूट रखें और लम एक बार बोल के देखें, लम। कहां पर वाइब्रेशन फील हो रहा है? बीज मंत्रा लम या लंग एलिमेंट, ये अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद में अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। इसका सेंस स्मेल है, स्मेल के द्वारा ये जुड़ा हुआ है और इसका दुश्मन फियर है, डेमोन। फियर, फियर आने से ये डाउन फील करता है। कौन से डिसऑर्डर होंगे? बोन के डिसऑर्डर, बार बार बीमार पड़ना, लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, टीथ का प्रॉब्लम, लोअर लिम्ब लेग्स का प्रॉब्लम, ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम, स्पाइन का प्रॉब्लम और डिप्रेशन का प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो आप डिप्रेस फील करेंगे। इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, सब रूट चक्र से रिलेटेड है। अगर ये ज्यादा हो जाएगा, एक्सेसिव, तो आप स्लगिश महसूस करेंगे, स्लो डाउन, लेजी हो जाएंगे, ओबेज हो जाएंगे, ओवर ईटिंग होगा, फियर ज्यादा महसूस करेंगे, ग्रीडी हो जाएंगे, मेटलिस्टिक दुनिया में ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और अगर ये डेफिशिएंट है तब आप फियरफुल महसूस करेंगे, एंग्जाइटी महसूस करेंगे, रेस्टलेसनेस, अंडरवेट, क्रॉनिक डिसऑर्गेनाइज्ड। बैलेंस्ड है तो क्या होगा? गुड हेल्थ, वेल ग्राउंडेड, फीलिंग सेफ, सिक्योर, स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू रिलैक्स, ये इसके प्रॉपर्टीज हैं। समझ में आया आपको रूट चक्र कितना इंपॉर्टेंट चीज है? ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, रूमेटोलॉजिस्ट है और फियर और कॉन्फिडेंस से रिलेटेड चीज आपकी इमोशन को हैंडल करता है। इसीलिए हमारे जो हिंदू धर्म है, हिंदू माइथोलॉजी, उसमें हनुमान जी को फियर के साथ जोड़ा गया है कि जब भी डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें। क्यों? ऐसा क्यों? सबके पीछे एक लॉजिक है कि जैसे ही आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, यानी हनुमान जी का पिक्चर आपके माइंड में आएगा। और हनुमान जी कैसे हैं? ऑरेंज कलर का शरीर है उनका और रेड कलर का लंगोट पहने हुए हैं। तो जैसे ही आप हनुमान जी को याद करेंगे, हनुमान जी का पिक्चर आपके उसमें आएगा, तो आपका रेड कलर विजुलाइज होना शुरू हो गया। और जैसे रेड कलर विजुलाइज होगा, आपका रूट चक्र एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। ये चक्र जो है विजुलाइजेशन के द्वारा, कलर विजुलाइजेशन के द्वारा या साउंड फ्रीक्वेंसी के द्वारा भी एक्टिवेट किए जा सकते हैं। तो इसीलिए जब हम हनुमान चालीसा का पठन करते हैं, बोलते हैं मंत्र, तो फ्रीक्वेंसी और हनुमान जी का चित्र जो मन में आता है, विजुलाइज करते हैं, उससे हमारा रूट चक्र एक्टिवेट होता है। ये मैं हिंदू माइथोलॉजी को आपके साइकोनिरोबिक के साथ एसोसिएट करके समझा रहा हूं कि और कैसे एक्टिव किया जाए इन्हें। हम इन्हें एक्टिव कर सकते हैं न्यूरोबिक एक्सरसाइज के द्वारा, एम्पावरिंग न्यूरोबिक। एम्पावरिंग न्यूरोबिक क्या है? इसका मुद्रा क्या है? पहले हम एक मुद्रा देख लेते हैं। कौन सी मुद्रा? पृथ्वी मुद्रा। ये देखिए, ये है फायर और ये है पृथ्वी। ये वाली फिंगर पृथ्वी का है और ये फायर है। इसको क्लोज करेंगे। तो जब आप इन दोनों फिंगर को ऐसे जोड़ते हैं तो आपका रूट चक्र अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। अगर आपका रूट चक्र ओवर एक्टिव है यानी कि वेट ज्यादा है तब आपको अर्थ एलिमेंट को नीचे रखना है, फायर को ऊपर करना है, जिससे रूट चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाए। अगर ये अंडर एक्टिव है तो आपको अर्थ को ऊपर करना है, फायर को नीचे करना है। फायर नीचे, अर्थ ऊपर, यहां पर रूट चक्र बढ़ना शुरू हो जाएगा। अर्थ एलिमेंट नीचे, फायर ऊपर, अर्थ एलिमेंट यानी रूट चक्र डाउन होना शुरू हो जाएगा। एक मुद्रा ये हो गई कम और ज्यादा करने की। दूसरा जो मुद्रा हम समझते हैं वो है शिवलिंग मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा। देखते हैं क्या है ये मुद्रा। रूट चक्र से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन और साथ में मुद्रा। यहां तक हमने समझा कौन सी डिजीज, हीलिंग अफर्मेशन। अगर आपका रूट चक्र कमजोर है, इंबैलेंस है, ओवर एक्टिव है तो आपको ये अफर्मेशंस बोलनी है। आई लव बीइंग इन माय बॉडी, आई एम सेंटर्ड एंड ग्राउंडेड, आई एम पीस विद द मटेरियल वर्ल्ड इन विच आई लिव, आई एम एबल टू लेट गो ऑफ माय फियर, नो आई एम इटरनली सेफ। यानी कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं बिल्कुल सेफ महसूस कर रहा हूं, मुझे किसी प्रकार का कोई फियर नहीं है और मैं फुली सिक्योर, फुली स्टेबल हूं। ऐसा आपको बार बार अफर्म करना है। पॉजिटिव अफर्मेशन जब आप देते हैं तो अपने साइकोलॉजिकली इस चक्र को एक्टिव करते हैं। रेड कलर के फ्रूट्स, फूड आइटम, एप्पल, ऑरेंज, चेरीज, कैनबेरीज, क्रैनबेरीज, वाटरमेलन, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, जितना भी रेड फूड्स हैं, टोमेटो, ये सब आपके रूट चक्र को इन्हांस करने के लिए जरूरी हैं। इसीलिए हफ्ते में एक दिन रेड कलर की डाइट को अपने लाइफ का हिस्सा बनाएं। ये मुद्रा है एक महावीर मुद्रा, हनुमान जी के लिए महावीर मुद्रा। ऐसे अगर आप इस मुद्रा में बैठकर एम्पावरिंग न्यूरोबिक करेंगे तो आपका रूट चक्र एक्टिव होगा। अगर आपको फियर महसूस होता है, एनीमिया है, डेफिशिएंसी है कैल्शियम की, मिनरल्स की, तो आपको ये महावीर मुद्रा में कुछ देर बैठकर भी बैठे भी रह सकते हैं। और इसी मुद्रा में अगर आप एम्पावरिंग न्यूरोबिक करेंगे, जो मैं अभी सिखाने वाला हूं, तब आपका रूट चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका है ये 3D कलर प्लेट विजुअलाइजेशन। ये प्लेट्स जो बनाई गई हैं, ये इस तरीके से बनाई गई हैं। ये है स्टीरियोग्राफिक इमेज, कंसंट्रेशन एंड क्योर मेथड। इस इमेज के ऊपर कुछ देर के लिए जब आप फोकस करेंगे, आपको इसके अंदर से एक 3D इमेज दिखाई देगा। और जब आप को वो 3D इमेज दिखाई देगा तो एक स्पेस आपको दिखाई देगा 3D में। उस स्पेस में आप पहुंच गए, दैट इज द हीलिंग स्पेस। अब आपको इसके अंदर एक सर्कल दिखाई देगा और उसमें से रेज निकल रही होंगी, 16 रेज, ऐसे सूर्य टाइप का। और उस सन के जो रेज हैं उस पे आपको फोकस करना है, 21 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है खुली आंखों से, और 21 टाइम क्लॉकवाइज। फिर आप आंखें बंद करनी है, जो इमेज आपको दिखाई दिया उसको यहां पर विजुअलाइज करना है रेड कलर के साथ, और 21 टाइम क्लोज आइज को एंटी क्लॉकवाइज, 21 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करना है। फिर विजुअलाइज करना है कि जो रेड कलर की एनर्जी से मेरा ब्रेन और मेरा माइंड वाइब्रेट हो रहा है, ये एनर्जी को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं कहा, बेस ऑफ द स्पाइन पर, जहां पर आपका रूट चक्र है। यानी आपने 3D कलर प्लेट्स के द्वारा कलर विजुअलाइज करके अपने ब्रेन के सेल्स को, माइंड के सेल को रिजोनेट करवाया। किस फ्रीक्वेंसी से? रेड कलर की फ्रीक्वेंसी से। अब ये जो 396 ट्रिलियन हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ब्रेन सेल्स वाइब्रेट होना शुरू हो गई, अब इस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहां पर हाई है और रूट चक्र पे लोएस्ट है, कॉन्शियसनेस को आप धीरे धीरे वहां लेकर जाएंगे, महसूस करेंगे, इमेजिन करेंगे कि ये रेड एनर्जी स्पाइन के थ्रू आपके लोएस्ट पॉइंट पे जा रही है जहां पर रूट चक्र है। और ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं फोर पेटल्स का रूट चक्र क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू हो गया है और इसका स्पीड नॉर्मल होते जा रहा है, ये बैलेंस्ड होते जा रहा है, ऐसा आपको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है। कौन सी मुद्रा में कर सकते हैं? महावीर मुद्रा में, पृथ्वी मुद्रा में। महावीर मुद्रा ये हो गई और पृथ्वी मुद्रा ये, बैलेंस्ड। कम या ज्यादा करना है तो आपको इस तरीके से करना है, कम, और ये अर्थ एलिमेंट को बढ़ाने का तरीका। जिस मुद्रा में आप बैठना चाहें उस मुद्रा में ये 3D प्लेट को देखें और साथ ही साथ मन ही मन आपको अफर्मेशंस को दोहराना है। कौन सी अफर्मेशन यहां पर लिखी हुई है? आई एम पावरफुल सोल, ये पावर से रिलेटेड है। आई एम पावरफुल सोल विद फुल ऑफ एम्पावरिंग एनर्जी। आई एम मर्ज्ड विद द गॉड द अलमाइटी द सुप्रीम एनर्जी। ये अफर्मेशंस हिंदी या इंग्लिश जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आपको इस मुद्रा के साथ उस कलर विजुअलाइजेशन के दौरान अपने मन ही मन दोहराने हैं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मुझमें शक्तिवर्धक ऊर्जा भरी हुई है, मैं सर्वमान, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च सत्ता ईश्वर में समाया हुआ हूं। इस तरीके से आप 3D प्लेट विजुअलाइजेशन के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से 10 से 15 मिनट में अपने रूट चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको एक म्यूजिक दिया गया है, अगर आप बीज मंत्रों को यहां पर सुनते हैं साथ ही साथ, रूट चक्र का बीज मंत्र लम, अगर उसका साउंड आप साथ में सुने, साथ में मुद्रा लगा दिया, साथ में नाद मिल गया और साथ में आप 3D कलर विजुअलाइज कर रहे हैं। तीन मेथड आप साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं और साथ में मन ही मन पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहरा रहे हैं। आपने चार मेथड के द्वारा साइमल्टेनियसली 10 से 15 मिनट में रूट चक्र को एक्टिवेट कर लिया। कितना आसान मेथड और कितना पावरफुल मेथड है अगर आप इसे अच्छे से करें तो। जिनका रूट चक्र कम एक्टिव है दिन में 2 बार कर लें, जिनका बैलेंस्ड है दिन में 1 बार कर लें, और बैलेंस रहेगा और अच्छा रहेगा। अब हम सीखेंगे एम्पावरिंग न्यूरोबिक्स, इसे कैसे करना है।
आइए आपको तीसरे
साथ ही साथ पहले आप देख लें, फिर देखने के बाद फर्स्ट टाइम आप देखेंगे, दूसरे टाइम आप करेंगे साथ ही साथ, ठीक है। पहले देख लें एक बार, मैं 2 बार रिपीट करूंगा एम्पावरिंग न्यूरोबिक को। पहली बार आपको देखना है, समझना है, दूसरी बार करना है।
कैप्सूल्स के बारे में बताते हैं जिसका नाम है शक्तिदायक नेरोबिक, शक्तिवर्धक नेरोबिक। ये आपके शरीर की शक्ति को बढ़ाता है, आपके हड्डी और मांसपेशियों में ताकत देता है और इस एक्सरसाइज को रेगुलर करने से आप जो भी भोजन करते हैं उस भोजन से कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, आयरन आपके शरीर में एसिमिलेट होता है, यानी शरीर में भोजन लगता है, नहीं तो भोजन ही आपको खा जाता है। भोजन आएगा, जाएगा पेट में और बाहर निकल जाएगा। आपके बॉडी के अंदर हमेशा आयरन और कैल्शियम की कमी रहेगी और बॉडी में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा। तो एक्सरसाइज पेन किलर एक्सरसाइज भी है, किसी भी अंग में दर्द हो एक्सरसाइज को करिए, आपका दर्द मिट जाएगा, नेचुरल पेन किलर है। और डेली एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको कभी भी शरीर में दर्द नहीं होगा। ये एक्सरसाइज आपके मूलाधार चक्र को पावरफुल बनाता है और बॉडी से एनर्जी को लीकेज को रोकता है। इस एक्सरसाइज को 3 चरण में किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में आप लंबा सांस लेंगे, ठीक है। पहले 3 चरण में किया जाता है। पहले चरण में आप लंबा सांस लेंगे, लंबा और गहरा सांस लेंगे। श्वास लेते समय आप भगवान से अनुभव करेंगे कि परमपिता परमात्मा से लाल रंग की किरणें आ रही है, परमात्मा आपके सिर के ऊपर एक फुट की दूरी पर है और वो आपको लाल रंग की किरणें दे रहा है, लाल रंग पूरे शरीर के अंदर जा रहा है। दूसरे चरण में आप अपने पूरे शरीर के मसल्स को टाइट करेंगे, मुट्ठी को इस प्रकार बंद करेंगे, अंगूठे को अंदर रख करके पूरे शरीर को टाइट करेंगे, हाथ को टाइट करेंगे, मुंह को फुलाएंगे हनुमान जी की तरह और गुदा को ऊपर की तरफ खींचेंगे, ना उसको ऊपर की तरफ खींच करके मूलबंध लगाएंगे। मूलबंध बहुत जरूरी है, मूलबंध से आपका मूलाधार चक्र पावरफुल होता है और एनर्जी की लीकेज रुक जाती है, आपके शरीर में ऊर्जा हमेशा विद्यमान रहती है। ये एम्पावरिंग एरोबिक्स कहीं भी कभी भी किया जा सकता है, ऑफिस में भी आप चेयर पर बैठ कर 2 मिनट का टाइम निकाल करके कर सकते हैं। इससे आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा और बॉडी के सेल्स के अंदर जो स्ट्रेस एक्यूमुलेट रहता है वो निकल जाएगा। देखिए कैसे एक्सरसाइज करते हैं। पहली बार हम लंबा सांस लेंगे, दूसरी बार में रिलैक्स करेंगे। श्वास को होल्ड करने की क्षमता आपके अंदर है, जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं उतना देर होल्ड कीजिए। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आप होल्ड मत कीजिए, सिर्फ लंबा सांस लीजिए और छोड़िए, लाल रंग को देखिए, जहां तक हो सके होल्डिंग का आप कर सकते हैं। इसको अंतःकुंभक भी कहते हैं होल्डिंग को, है ना। अभी हम करके दिखाएंगे कैसे किया जाता है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ओके। आप ये एक्सरसाइज कम से कम 5 मिनट करिए या टोटल 11 बार के लिए, इसको 10-20 मिनट करने की जरूरत नहीं है, 11 बार 5 मिनट एक्सरसाइज आप करेंगे, आपका शरीर एनर्जेटिक रहेगा।
एक बार इसे करेंगे साथ में, मैं इस वीडियो को दोबारा शुरू कर रहा हूं, सब लोग साथ में करेंगे।
आइए आपको तीसरे कैप्सूल्स के बारे में बताते हैं। आपका मोजा हमेशा विद्यमान रहते हैं, एक्यूमुलेट रहता है वो निकल जाएगा। देखिए कैसे एक्सरसाइज करते हैं। पहली बार हम लंबा सांस लेंगे, दूसरी बार में रिलैक्स करेंगे। श्वास को होल्ड करने की क्षमता आपके अंदर है, जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं उतना देर होल्ड कीजिए। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आप होल्ड मत कीजिए, सिर्फ लंबा सांस लीजिए और छोड़िए, लाल रंग को देखिए, जहां तक हो सके होल्डिंग का आप कर सकते हैं। इसको अंतःकुंभक भी कहते हैं होल्डिंग को, है ना। अभी हम करके दिखाएंगे कैसे किया जाता है।
साथ में करें आप।
1 2 3
रेड वन को विजुलाइज करें।
2 3 1 2 थ्री, वन टू थ्री, ओके। आप ये एक्सरसाइज कम से कम 5 मिनट करिए या टोटल 11 बार करिए, इसको 10-20 मिनट करने की जरूरत नहीं है, 11 बार 5 मिनट एक्सरसाइज आप करेंगे, आपका शरीर एनर्जेटिक रहेगा।
आप म्यूट कर लें अपने आप को। यस, अंतःकुंभक यानी जब हम अपने एनस को अंदर की तरफ खींचकर होल्ड करते हैं, जो लोग योग जानते हैं उसमें कुंभक लगाना सिखाया जाता है, कई प्रकार के कुंभक होते हैं, तो जब से लोएस्ट पॉइंट है एनस, उसको अंदर की तरफ खींचकर वहां पे होल्ड करना, यानी जो एनर्जी हम ले रहे हैं गॉड से, रेड कलर की एनर्जी, उसे लेना है, सांसों के साथ होल्ड करना है और नीचे से लीक ना हो उसे हमें वहां पर कुंभक लगा देना है। जब आप इस तरीके से करते हैं तब आप इस रेड कलर की फ्रीक्वेंसी को, रेड कलर के लाइफ फोर्स एनर्जी को कुछ देर तक बॉडी में एक्सेस में ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने रूट चक्र को वापस बैलेंस कर सकते हैं। खाली पेट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिन में कितनी बार बताया इन्होंने, आप 11 टाइम करें 5 मिनट या 11 बार। इसके अलावा अगर रूट चक्र कमजोर है आपका, आप मुद्रा लगाएं, ये मुद्रा महावीर मुद्रा, उस मुद्रा में लम का उच्चारण करें, स्पाइन स्ट्रेट रखें बैठे और लम के साथ करना शुरू करें। करेंगे इसको भी बीज मंत्र के साथ, सब लोग स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे और या तो महावीर मुद्रा में आ जाएंगे या पृथ्वी मुद्रा में, और मैं आपको बीज मंत्र ऑडियो विजुअल में दूंगा, आपको उसे सुनते हुए अपने आप को बोलना भी है साथ में, किस तरीके से लम का उच्चारण फील करना है रूट चक्र में, वाइब्रेशंस, लम, ये जो रिजोनेंस है ये रिजोनेंस को फील करना है। मैं आपको ऑडियो विजुअल्स यहां से दूंगा और आप अपने आप को म्यूट रखें और करेंगे साथ में, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, पृथ्वी मुद्रा या महावीर मुद्रा, ये जो रिजोनेंस है ये रिजोनेंस को फील करना है। मैं आपको ऑडियो विजुअल्स यहां से दूंगा और आप अपने आप को म्यूट रखें और करेंगे साथ में, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, पृथ्वी मुद्रा या महावीर मुद्रा।
लंग 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 कुंडलिनीयारोहणम् कुंडलिनीयारोहणम् कुंडलिनीयारोहणम्
धीरे से आंखें खोलकर रेड कलर को विजुलाइज करते हुए वापस कॉन्शियस माइंड के साथ कॉन्शियसनेस में, प्रेजेंट की कॉन्शियसनेस में एक्टिव हो जाएं। कैसा फील हुआ ये लम मंत्र का उच्चारण? अनम्यूट कर लें अपने आप को।
बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बॉडी पूरी एनर्जेटिक हो गई है।
गुड। इमीडिएट 5 मिनट मात्र आपने साइको निरोबिक का एम्पावरिंग निरोबिक किया और 5 मिनट बीज मंत्र किया, लेकिन आपको नहीं मालूम इस 5 मिनट या 10 मिनट के अंतराल में आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, पूरे मसल्स के अंदर वापस से एटीपी फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। सेलुलर लेवल पर एटीपी बहुत ज्यादा मात्रा में बन गए हैं। कभी भी एनर्जेटिक नहीं लगे, थकावट लगे, ये एक्सरसाइज कर लें, इमीडिएट आपको रेड कलर की ऊर्जा से एटीपी फॉर्मेशन होगा। अच्छा, अब आप अपने आप को वापस म्यूट कर लें। कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुंडलिनी, हां जी
सर, एक बात पूछ रहा था सर, ये इसको अभी किया तो इससे पसीना आ रहा था सर बहुत, क्या वजह से?
हाँ, हो सकता है क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा बन गई होगी, इसीलिए जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो उसे आराम से करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ता है इसको करने से। तो अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो इसलिए बताया गया आपको होल्ड नहीं करना है, जो ऐसा वाली पोजीशन थी एम्पावरिंग में
जी,
होल्ड नहीं करना है। बिना होल्ड करे रेड कलर को विजुलाइज करें, थोड़ा पानी पी लें, अच्छा लगेगा, कुछ देर रिलैक्स हो जाएं
जी,
थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इससे।
नहीं, हल्का सा पसीना आया सर, ऐसा ज्यादा
नहीं। कोई बात नहीं, अगर लग रहा है तो रिलैक्स हो जाए। अच्छा, कुंडलिनी, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं क्या होता है ये कुंडलिनी और क्या है इसको। जहां रूट चक्र होता है वहां पर कुंडलिनी शक्ति होती है, ऐसा वेदों में दिखाया गया है। ढाई कुंडलिनी, ढाई वन टू और हाफ, तीन ढाई क्वाइल में यहां पर कुंडलिनी शक्ति रहती है। ये क्या होती है कुंडलिनी? जब हमारा जन्म होता है, यानी जब हम मदर की वूम में होते हैं, बच्चा मदर की वूम के अंदर होता है, तीसरे महीने में ऐसा कहा जाता है कि कुंडलिनी शक्ति यहां से ब्रह्मरंध्र से सिर के पॉइंट से जो एक तालू होता है, जो बहुत ही बच्चे का देखेंगे एक पॉइंट होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है, वहां से एंटर करती है और एंटर करने के बाद वो वहीं पर रहती है और वो धीरे धीरे करके फिर नीचे स्पाइन के थ्रू आनी शुरू होती है। कब तक? शुरू में कुंडलिनी शक्ति शुरू के 9 महीनों तक यहीं पर रहती है बच्चे के अंदर, जब बच्चा वूम्ब के अंदर रहता है। इसीलिए क्राउन चक्र में कुंडलिनी शक्ति होती है बच्चे के, इसीलिए बच्चा मदर की वूम्ब के अंदर हमेशा ब्लिस स्टेट में रहता है। ब्लिस, उसे आनंद की प्राप्ति होते रहती है, वो ब्लिस स्टेट में होता है, उसे कुछ भी मजा बाहरी दुनिया का नहीं पता होता क्योंकि कुंडलिनी उसके क्राउन चक्र में है। अगर हमारी भी कुंडलिनी यहां पर आ जाए तो हम भी ब्लिस हो जाएंगे। फिर जब पैदा होने वाला होता है तो ये पॉइंट से कुंडलिनी नीचे चली जाती है और जो रूट चक्र है वहां पर जाकर ब्लॉक हो जाती है, लॉक। और इसीलिए जब बच्चा बाहर निकलता है, जैसे ही वो एमनियोटिक सैक फटता है, बच्चा बाहर आता है, कुंडलिनी शक्ति इमीडिएट वहां से जाकर नीचे में ब्लॉक हो जाती है और बच्चे को कुछ ऐसा महसूस होता है कि उसका ब्लिस छीन लिया, इसीलिए वो रोना शुरू करता है। वो मेडिटेशन की स्टेट में होता है, ब्लिसफुल कंडीशन में, और जैसे ही वो पैदा होना शुरू होता है, मतलब वो कुंडलिनी यहां से नीचे गई, ब्लॉक हुई, तो इमीडिएट वो झटपटाने लगता है। अब यहां पर आकर वो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र के नीचे यहां पर जाके ब्लॉक हो जाती है और वहां से हमारी लाइफ में हमेशा लाइफ लॉन्ग हमें वाइटल फोर्स देती है, वहां से एनर्जी मिलती है हमें, जो हम दिन भर काम करते हैं वाइटल। लेकिन कभी कभार ये कुंडलिनी शक्ति या तो एक्सीडेंटली अपने आप ही वहां से एक्टिव होके ऊपर मूव करना शुरू कर देती है सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू। अगर ये वहां से ऊपर आ गई तो आपको अलग अलग एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाएंगे, इसको बोलते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग। कई बार अपने आप हो जाता है और कई बार इसे किया जाता है मेडिटेशन के द्वारा या स्पेशल टेक्निक्स के द्वारा। अगर कुंडलिनी एक्टिवेट होगी तो आपको स्पिरिचुअल या मिस्टिक एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाएंगे, जिस चक्र में जाएगी वहां तक उससे रिलेटेड कुछ कुछ अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। और फिर अगर इसको यहां तक ला दिया जाए, वैदिक काल में योगिक प्रैक्टिसेस होती थी जिसके द्वारा कुंडलिनी को जागृत करके यहां तक ला दिया जाता था थर्ड आई तक, और अगर थर्ड आई तक ये पहुंच जाए तो फिर आपको इंट्यूटिव पावर आ जाती है, यानी आप ये आंखें बंद करके फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड देख सकेंगे, आपके अंदर बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी जिसे योगिक पावर कहा जाता है, मिस्टिक पावर्स कहा जाता है, स्पिरिचुअल पावर कहा जाता है। और इसके बाद अगर यह है, ये पूर्ण कुंडली जागरण नहीं है, ये आंशिक कुंडली जागरण है, बहुत समझदार हो जाएंगे आप, एनलाइटन हो जाएंगे। अगर इसके ऊपर यहां तक कुंडली को पहुंचा दिया गया तो आप ब्लिस की स्टेट में पहुंच जाएंगे। उसका अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता कि ब्लिस क्या होता है, वो आप फील ही कर सकते हैं। और कुंडलिनी ऐसा नहीं कि एक बार यहां पहुंच गई तो फिर वो यहीं पर रहेगी, वो बार बार ऊपर नीचे मूव होती रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जहां पर वो जाएगी उस चक्र से रिलेटेड चीजें आपको महसूस होंगी। मान लो किसी दिन यहां पर आ गई तो आपको बिल्कुल हर किसी के लिए प्यार ही प्यार महसूस होगा, क्योंकि आपकी कुंडली उस समय इस अनाहत चक्र में एक्टिव है। किसी दिन यहां पहुंच गई तो आप अपनी इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, कुछ कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे। कुछ दिन यहां पहुंच गई तो आपको कुछ स्पेशल इंट्यूशन आ जाएंगे। लेकिन ये कुंडलिनी जागरण ये हायर प्रक्रिया है, इसे किसी गुरु की देखरेख में ही करना चाहिए। लेकिन कुंडलिनी जागरण से पहले आपको उस कुंडलिनी का रास्ता प्योर करना होता है। और रास्ता क्या है? ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, ये जो पाथ है जहां से कुंडलिनी ऊपर आती है या ऊपर से नीचे जाती है, इस रास्ते को जब तक हम प्योरीफाई नहीं करेंगे, ब्लॉकेज नहीं खोलेंगे, तब तक कुंडलिनी जागरण नहीं हो सकता। साइकोनिरोबिक साइंस आपके इन रास्तों को प्योरीफाई करता है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस करता है। ईड़ा पिंगला जब बैलेंस होती है, सुषुम्ना ओपन होना शुरू होती है, और ये जब ओपन होती है और चक्र बैलेंस होते हैं, ये है कुंडलिनी एक्टिवेशन का पहला प्रोसेस। रास्ता क्लियर, अगर आपका ये पाथवे पूरा क्लियर होगा तब तो फिर आप स्वागत करेंगे कुंडलिनी का। वो शक्ति है, यहां शिव रहते हैं और वो शक्ति है, यीन और यांग। यीन मतलब शक्ति नीचे और यांग मतलब शिवा ऊपर। चाइना में इसे यिंग और यांग कहा जाता है और हमारे वेदों में शिव और शक्ति का वो कहा गया है। और जब भी शक्ति एक्टिवेट होगी वो शिव की तरफ जाएगी, क्योंकि शिव और शक्ति आपस में मिलना चाहते हैं, मेल फीमेल एनर्जी। मैंने एक बार एक शिविर अटेंड किया था जिसके अंदर मैंने अपनी शक्ति को कुंडलिनी को जागृत करके वो ब्लिस स्टेट में पहुंचा और देखा, मैंने अनुभव किया कि यहां तक पहुंचा, कुंडलिनी जागरण किया, और वो जो स्टेट थी वो आधा घंटा में जिस स्टेट में था मैं उसको बता नहीं सकता। मैंने सुना जरूर था कुंडलिनी जागरण होता है, लेकिन जब कुंडलिनी को मैंने यहां देखा, महसूस किया और वो ब्लिस को महसूस किया, वो अनुभव ही अलग था। तो कुंडलिनी एक्टिवेट किया जा सकता है, लेकिन पहले अभी अपने को रोगी से, अभी हम भोगी हैं, रोगी हैं, भोगी और रोगी से निरोगी बनना है और फिर निरोगी से योगी बनना है। यह रास्ता सबसे अच्छा होता है। कुछ लोग क्या है, सीधा भोगी और रोगी से योगी बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर कुंडलिनी क्या है, इधर उधर गलत डायरेक्शन में चली जाएगी, और गलत डायरेक्शन में चली गई तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर गलत डायरेक्शन में कहीं चली गई, किसी दूसरी नाड़ी में चली गई सुषुम्ना की बजाय, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो बहुत सारे साइकिक सिम्टम और बहुत सारे फिजिकल सिम्टम आ जाएंगे। इसीलिए कुंडलिनी जागरण के बारे में कभी भी गलत डायरेक्शन में ना जाएं। अगर करना है तो पहले अपने इस पाथवे को पूरा शुद्ध कर लें, एनर्जी बॉडी को शुद्ध कर लें। उसके बाद आपको पर्पस पता होना चाहिए कि मैं कुंडलिनी को क्यों एक्टिवेट करना चाहता हूं। क्या मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जाना है या मुझे कुछ स्पिरिचुअल पावर चाहिए? कुछ तो पर्पस होगा कुंडलिनी को एक्टिवेट करने का। जैसे बीज मंत्र हैं, ये जो बीज मंत्र वाला जो मैंने आपको कराया, ये एक दिखाया, ऐसे मैं डेली आपको बीज मंत्र वाला कराऊंगा और लास्ट दिन पूरा बीज मंत्र के साथ एक साथ 40 मिनट का एक करेंगे, जिसमें कुंडलिनी का एक हल्का सा झलक आपको मिलेगा। जब आप 40 मिनट का एक साथ करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कोई शक्ति आपके यहां से ऐसे वाइब्रेशन की फॉर्म में ऊपर जा रही है और यहां पहुंच के आपको कुछ सेंसेशन फील होगा। लेकिन घबराने की बात नहीं, वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि आप बीज मंत्रा के साथ फ्रीक्वेंसी को जागृत एक्टिवेट करके उसका एक एहसास ले रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हम केवल पाथवे को क्लीन करेंगे। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी सबकी एक्टिवेट होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, चक्र बैलेंस होने चाहिए, यह हर व्यक्ति की जरूरत है। इसके बाद कुंडलिनी जागरण करना है, वो एक नेक्स्ट स्टेप है। तो मैं साइकोनिरोबिक की मदद से आपके पाथवे को क्लीन करवाना सिखा रहा हूं, नाड़ियों को एक्टिवेट करवाना सिखा रहा हूं। आपकी नाड़ी का शोधन होगा 72,000 नाड़ियों का, और सातों चक्रों का बैलेंस होगा, और 114 चक्रास जो बंद पड़े हुए थे वो ओपन होने शुरू हो जाएंगे। इसी में इतने से ही आपको बहुत सारे मैजिक दिखाई देंगे, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, आप मैग्नेटिक पावर आ जाएंगी, जो आप सोचेंगे वो आपके साथ होना शुरू हो जाएगा, इतना करने मात्र से। फिर अगर आप अगले स्टेप पे जाना चाहेंगे एडवांस साइको निरोबिक करिए और उसके बाद फिर किसी गुरु की मदद से आप चाहें तो कुंडलिनी एक्टिवेट भी कर सकते हैं। चलिए इतना पार्ट आज तक हमने सीखा, अब हम सीखेंगे निरोबिक एक्सरसाइज के अलावा, अब हम सीखेंगे निरोबिक स्पा, यानी कि इसी मुद्रा में या महावीर मुद्रा में कलर विजुअलाइजेशन के द्वारा आंखें खोलकर या बंद करके कैसे हम सुप्रीम पावर से एनर्जी को टैप करके अपने रूट चक्र को एक्टिवेट करेंगे। एक छोटा सा एम्पावरिंग निरोबिक स्पा मैं आज आपको करवाऊंगा, इसके साथ आप करेंगे।
घुटनों से नीचे का पोर्शन बिल्कुल रिलैक्स हो गया, धीरे धीरे घुटनों से ऊपर कमर तक और कमर के नीचे का पोर्शन बिल्कुल रिलैक्स हो गया। धीरे धीरे अब ऊर्जा को कमर से ऊपर धीरे धीरे नाभि तक, नाभि से ऊपर धीरे धीरे हृदय तक, हृदय से ऊपर धीरे धीरे गर्दन तक, और आप सभी फील करें कि गर्दन के नीचे का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो गया और अब पूरी ऊर्जा को गर्दन से ऊपर विथड्रॉ करके भ्रुकुटि के बीच में केंद्रित करें और फील करें कि मैं एक चमकता हुआ ज्योति स्वरूप सितारे की तरह बिल्कुल भ्रुकुटि के बीच में स्थित चमक रही हूं। फील कीजिए, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा भ्रुकुटि के बीच में हूं। अब तीसरे स्टेप में फील कीजिए कि मेरे ऊपर सिर के ऊपरी हिस्सों में सहस्त्रार चक्र है, हजार पंखुड़ियों वाले कमल की तरह वो धीरे धीरे खुल रहा है। फील करें सिर के ऊपरी हिस्सों में एक हजार पंखुड़ियों वाला कमल का फूल खिल रहा है और ईश्वरीय ऊर्जा लेने के लिए तैयार है। अब चौथे स्टेप में दिल से परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को आप आह्वान करें और बोले दिल से, हे प्रभु, ओ गॉड फादर, आप आइए और मेरे शरीर के अंदर जितने चक्र हैं, जितने ऊर्जा केंद्र हैं, उन सभी ऊर्जा केंद्रों को हील करें, क्लीन करें और शक्तिशाली बनाएं। और आप अनुभव करें कि स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा गॉड आपके सहस्त्रार चक्र से ठीक एक फीट की दूरी पर आ गया और वो अपनी शक्तियों को हमारे शरीर के अंदर शावर के रूप में वर्षा कर रहा है। सर्वप्रथम अनुभव करें लाल रंग की शक्ति की किरणों को, परमात्मा से लाल रंग की शक्ति की किरणें सहस्त्रार चक्र पर झरने की तरह गिर रही है। धीरे धीरे ब्रेन से होते हुए चेहरे से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मूलाधार चक्र जो एनस और जेंटल्स के बीच में है, उदा और उपस्थ के बीच में है, वहां पर केंद्रित हो रही है। शक्ति की किरणें हमारे मूलाधार चक्र में जाकर कुंडलनी को जागृत कर रही है और आप फील करें कि मूलाधार चक्र अपने समान गति से घूमने लगा। लाल रंग की ऊर्जा वहां पर केंद्रित हो रही है और लाल रंग की ऊर्जा हड्डी और मांसपेशियों में फैल रही है। परमात्मा की किरणों से हमारा मूलाधार चक्र मजबूत हो रहा है और मजबूत हो गया। पूरे शरीर के अंदर शक्ति आ गई और अब मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। ये शरीर भी परमात्मा की शक्ति से भरपूर हो गया है। लाल रंग की किरणें मेरे हड्डी और मांसपेशियों के अंदर फैल गई है। अंत शरीर लाल रंग का हो गया है और मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं।
रेड कलर को विजुलाइज करते हुए, गॉड को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को रब करें। धीरे से अपनी आंखों पर रखते हुए रेड कलर की फीलिंग के साथ, रूट चक्र की एक्टिव फीलिंग के साथ, कॉन्फिडेंस की फीलिंग के साथ, सिक्योरिटी की फीलिंग के साथ, सेफ्टी की फीलिंग के साथ इस दुनिया में एंटर करें। किसी भी चक्र को या एनर्जी बॉडी को एक्टिवेट करने का कुछ मेथड्स हैं साइंटिफिक तरीके से। एनर्जी मींस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, यानी अब हम उन्हें एनर्जी बॉडी जो है जिसके अंदर नाड़ियां हैं उसके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी को हमें टैप करना है। साइकोनिरोबिक साइंसेस और दूसरी साइंस में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है। प्राणिक हीलिंग या रेकी हीलिंग या अदर हीलिंग जितने भी हैं सब अच्छे हैं, लेकिन वहां पर हम कॉस्मिक एनर्जी को टैप करते हैं। यहां पर हम कॉस्मिक एनर्जी को टैप नहीं करते, हम स्पिरिचुअल एनर्जी को टैप करते हैं, क्योंकि हम किसके साथ कनेक्टेड है? सोर्स के साथ। सोर्स कहां है? गॉड। हम कहां से एनर्जी ले रहे हैं? गॉड से। अपनी सोल को, अपने इंटेलेक्ट को, अपने माइंड को किसके साथ कनेक्ट करते हैं? सुप्रीम सोल के साथ, सुप्रीम सोर्स के साथ, वहां से एनर्जी टैप कर रहे हैं। इसीलिए हम यहां पर कॉस्मिक या यूनिवर्सल एनर्जी नहीं ले रहे हैं, हम यहां पर ले रहे हैं स्पिरिचुअल एनर्जी, बायो इलेक्ट्रिकल करंट। अब ये कैसे टैप होगा? जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को गॉड के साथ, डिवोशन के साथ जोड़ेंगे। इमोशन उसके ऊपर, डिवोशन, डिवोशन में जोड़ना है आपको। फिर एनर्जी को एक्टिवेट करने का तरीका होता है, सबसे पहला तरीका है साउंड, यानी कि हम कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड को अगर कानों में सुने और वो फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी के अंदर जाए तो हमारी एनर्जी बॉडी के अंदर जो चक्र हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब कौन सी, जैसे बीज मंत्र, बीज मंत्र जो बनाए गए हैं वेदों में बताए गए हैं, बीज मंत्र मतलब वो ओरिजिनल मंत्र है, उसकी साउंड फ्रीक्वेंसी इतनी है जितना कि उस पर्टिकुलर चक्र की फ्रीक्वेंसी है। जब ये दो साउंड उस मंत्र के साथ उस चक्र तक पहुंचेगी तो चक्र एक्टिवेट होना शुरू होगा, पहला मेथड। दूसरा, कुछ बाइन्यूरल बीट्स होती हैं, कुछ टोन्स होती हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी साउंड होती हैं जो मैं आपको कोर्स के एंड में दूंगा, उसको सुनकर भी आप अपने चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे जीडीवी, बायोवेल मशीन जो हमारे सेंटर में है वहां पर वो आपके चक्र का एनालिसिस करता है, वो ये देखता है कि उसकी कितनी वाइब्रेशन कम हो गई है, ज्यादा हो गई है या कम हो गई है, वो किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा है, कितना बैलेंस है, कितना डिस्टर्बेंसेस है, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो एक बाई न्यूरल बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। एक डिवाइस है बायोकोर डिवाइस, वो बायोकोर डिवाइस जब बायोवेल के साथ अटैच की जाती है तो ये बायोवेल सॉफ्टवेयर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और वो फ्रीक्वेंसी उस चक्र को एक्टिवेट करती है। तो इस तरीके से बायोवेल आपके सातों चक्रों के लिए एक पर्सनलाइज्ड म्यूजिक जनरेट करके देता है बाई न्यूरल बीट्स की फॉर्म में। जब आप उसे सुनते हैं तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जिसके लिए वो बनाया गया है उसके सारे चक्र अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, एक्टिवेट और बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन अगर यही म्यूजिक किसी दूसरे व्यक्ति ने सुन लिया उसके सारे चक्र हिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये उसके लिए नहीं बना है, पर्सनलाइज्ड है, कस्टमाइज्ड है। एक होता है कि जैसे हम रूट चक्र की फ्रीक्वेंसी 396 है, 396 फ्रीक्वेंसी की साउंड अगर हम साउंड यहां पर लगाएं सुने तो भी रूट चक्र एक्टिवेट होगा। और एक है पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड, मतलब आपका चक्र कितना इंबैलेंस है, किस फ्रीक्वेंसी पर रिजोनेट हो रहा है और उसको 396 के आसपास लाने के लिए कितना गैप है, वो गैप फुलफिल करता है बायोवेल। बीज मंत्र हुआ, बायोन्यूरल बीट्स हुई, बायोकोर म्यूजिक हुआ, ये तीन हुए साउंड। इसके अलावा कुछ मंत्र भी हैं, मंत्रोच्चारण भी आपकी एनर्जी बॉडी को बैलेंस करते हैं। फिर मेथड हुआ देखने के द्वारा, जब हम 3D कलर विजुअलाइजेशन के द्वारा 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक उस प्लेट को देखते हैं कंसंट्रेशन के मेथड से, यानी कि धारणा के मेथड से, प्रत्याहार के मेथड से, कंसंट्रेशन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये जो योग में बताया गया है उसी का तरीका है ये स्टीरियोग्राफिक इमेज। जब आप इसमें 2D से 3D में जाते हैं तब आप कुछ देर तक आपके आईज यानी कि विजुअल सेंस उस कलर को देख रही है और देखने के साथ साथ फोकस होकर देख रही है, कंसंट्रेट होकर देख रही है। क्यों? क्योंकि अगर वो थोड़ा देर भी आपने ध्यान नहीं दिया तो वो 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना देर आप 3D देख पा रहे हैं मतलब उस समय आप उस कलर के साथ ट्यून हो रहे हैं, रिजोनेट हो रहे हैं। जैसे ट्यूनिंग फोर्क को रिजोनेट करते हैं किसी चीज पर मार के, ऐसे ही आप अपने ब्रेन के, माइंड के ट्यूनिंग फोर्क को ये इस पैड के साथ, 3D इमेज के साथ ट्यून कर रहे हैं, रिजोनेट कर रहे हैं। और फिर आपने ये देखा और देखने के बाद आंखें बंद की तो आपने उस चीज को विजुअलाइज किया। विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन आफ्टर इमेज मेथड अपने आप में सबसे इफेक्टिव टेक्निक है। इसीलिए योग में, ध्यान में आंखें बंद करके चीजों को विजुअलाइज करवाया जाता है, इमेजिनेशन करवाया जाता है। और उसमें अगर आप डिवोशन ऐड कर दें कि मैं गॉड के साथ कनेक्टेड हूं और उस कलर के साथ आपने ले लिया और आपने विजुअलाइज करके उसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने का तरीका आपको निरोबिक स्पा में दिखाया गया है, तब आप उस चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। तीसरा पार्ट निरोबिक स्पा। अब ये निरोबिक स्पा इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप गॉड के साथ डिवोशन भी ला सकें, आप रेड कलर की या जिस कलर की आपको जरूरत है वो कलर को विजुलाइज भी कर सकें और एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी दोनों को एक साथ विजुलाइज करें, यानी बोन, मसल, ज्वाइंट और उसके साथ रूट चक्र और नाड़ियां। तीन मेथड इतने पावरफुल मेथड हैं, इन्हें आप जब करते हैं किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, सीक्वेंस डजंट मैटर, तीनों का कॉम्युलेटिव इफेक्ट होगा, मतलब 1+1+1 3 नहीं होगा, 33 हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। तो साइकोनिरोबिक एंशियंट वैदिक साइंस का मॉडर्न फॉर्म है, साइंटिफिक फॉर्म है, उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसमें प्रत्याहार, धारणा और ध्यान तीनों का कंपोनेंट है। फिर यम, नियम, आसन, ये जो सारी बातें हैं ये भी उसमें इनकॉर्पोरेटेड है, क्योंकि साइकोनिरोबिक में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी सिखाया जाता है। ये जो निरोबिक एक्सरसाइज हैं, ये बंद, मूल बंद, अलग अलग बंद लगाए जाते हैं, 4 प्रकार के बंद होते हैं, वो बंद का एडवांस फॉर्म है निरोबिक एक्सरसाइज। मैंने इनके ऊपर PhD के दौरान बहुत डीप में जाके रिसर्च किया, चंद्रशेखर सर के साथ बैठ के बात होती थी, उनसे टेलीफोनिकली बात होती थी, जब भी आते थे हम एक एक दो दो दिन तक बैठ के डिस्कशंस करते थे इन चीजों के ऊपर। तो ये जो डिस्कशंस का नतीजा एंड रिजल्ट पता चला, तो ये पता चला कि सर ने इस पे योग और कई साइंसेस को मिलाकर लिया है। शायद सर को भी नहीं मालूम, चंद्रशेखर सर को, कि उन्होंने क्या चीज प्रोड्यूस कर दी है, क्योंकि उनको तो गॉड की कॉन्शियसनेस मिली, वो शायद साइंटिस्ट नहीं थे, उनको शायद योग भी नहीं पता होगा, लेकिन गॉड ने उन्हें जो दिया, जब वो गॉड के साथ जुड़े, गॉड ने उन्हें जो एनर्जी ट्रांसफर किया, जो इंफॉर्मेशन दिया, वो अद्भुत था। चंद्रशेखर सर खुद बोलते हैं कि ये मैंने नहीं लिखा है, ये गॉड ने लिखवाया है उनकी डिजीज के समय में, और अभी भी चंद्रशेखर सर और चीजें डिस्कवर कर रहे हैं। अभी वो गॉड के साथ फिर कनेक्टेड है, वापस साइकोनिरोबिक 2 का उदय होगा, एडवांस साइकोनिरोबिक आएगा, एडवांस साइंस का और उदय होगा। मैं सर से जब मिला था, मैंने सर को कहा कि सर आप अपना समय ले, अपनी कॉन्शियसनेस सर गॉड के साथ आप जुड़े हुए हैं, जितना नॉलेज मिल सकता है सर ले लीजिए, क्योंकि आपके पास ये डिवाइन पावर है, आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हर किसी के पास नहीं होती है। और जब आप वापस, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, तो सर फिर डिस्कशन करेंगे, फिर इसको साइंटिफिक वे में दुनिया के सामने लेकर आएंगे। आने वाला समय इन्हीं साइंसेस का समय है, वैदिक साइंस को मॉडर्न वे में अडॉप्ट करने का समय है, वैदिक लाइफस्टाइल को आज 21st सेंचुरी में लाने का समय है, गोल्डन एज। क्योंकि हम गोल्डन एज तो नहीं ला सकते, लेकिन लाइट एज गोल्डन एज का पहला स्टेप है। 2028 के बाद से हम वापस गोल्डन एज में आएंगे, लेकिन ये गोल्डन एज पुरानी वाली गोल्डन एज जैसा नहीं होगा, उससे कहीं एडवांस होगा। आज का जो गोल्डन एज का व्यक्ति होगा, वो लैपटॉप के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगा, वो गॉगल पहनकर अपनी ऑरा को भी देख पाएगा और दूसरों की ऑरा को भी वो स्कैन कर पाएगा, उसके पास टेक्नोलॉजी भी होगी और माइंड भी होगा और कॉन्शियसनेस भी होगी। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर विराम देता हूं।